दिन भर तारीख 24 मई दिन मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के शोध के बाद बाजार में बिकने वाली ब्रेड में है मौजूद खतरनाक रसायन। भारतीय खाद्य मानक प्राधिकरण ने एक हानिकारक रसायन पर प्रतिबंध के संकेत दिए।
जो पोटेशियम ब्राउनेट डाला इन्होंने कम करे या बिल्कुल खत्म ही कर दे उसमें से। जो ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए ऐसे केमिकल डालते क्यों जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचे।
सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मोदी के 2 साल पूरा होने को हैं। विशेष श्रृंखला में बात उन मुसलमानों की जो बीजेपी समर्थक हैं।
मैं कहना चाहता हूं जिन मुसलमानों को डर लग रहा है उन मुसलमानों को 1 महीने के लिए आप पाकिस्तान भेज दो और 1 महीने बाद जब आप उनको बुलाओगे तो इंशाअल्लाह वो हिंदुस्तान की धरती चूमते हुए नजर आएंगे।
पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों के इस्तेमाल की जांच के आदेश दिए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक अध्ययन में दिल्ली में ब्रेड और बेकरी उत्पादों के 84% नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले 2 रसायन पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट के अंश मिलने का दावा किया गया है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने ये कहा है कि इनमें से 1 पोटेशियम ब्रोमेट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फ्रांस के ऊर्जा कंपनी टोटल ने कहा है कि फ्रांस में तेल रिफाइनरियों की नाकेबंदी को देखते हुए तेल क्षेत्र में निवेश की योजना पर दोबारा विचार किया जाएगा। नए श्रम कानून के विरोध में नाकेबंदी की वजह से फ्रांस में पेट्रोल की कमी हो गई है। यूनियनों ने कहा है कि इस नाकेबंदी से तेल उत्पादन में 50% कमी आ गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने नाकेबंदी के लिए कुछ एक चुनिंदा लोगों को जिम्मेदार ठहराया है। मैं इस खबर को नज़रअंदाज कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि जिनका कानूनी अधिकार है मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस नाकेबंदी को भी स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये कुछ एक लोगों की योजना के मुताबिक हो रहा है। ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंटरनेट कंपनी गूगल के मुख्यालय पर आयकर के मामले में छापे मारे गए हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया है कि अभियोजन पक्ष की तरफ से आए बयान में कहा गया है कि गूगल आयरलैंड लिमिटेड फ्रांस में वित्तीय दायित्व निभाने में नाकाम रही। सूत्रों के मुताबिक पेरिस में स्थानीय समय अनुसार सुबह से ही गूगल के अधिकारियों से पूछताछ चल रही है और करीब 100 जांचकर्ता छापे में शामिल हुए हैं। गूगल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के एक 13 साल पुराने फैसले को सही ठहराया है जिसमें अदालत ने पुलिस को अनियंत्रित गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। अदालत के फैसले के बाद बांग्लादेश में पुलिस को गिरफ्तारी के वक्त पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा और गिरफ्तारी के 3 घंटे में इसका कारण बताना भी जरूरी होगा। इसके अलावा पूछताछ शीशे के दीवारों वाले कमरे में ही करनी होगी। बांग्लादेश में अनियंत्रित गिरफ्तारियां आम बात है और 1998 में पुलिस हिरासत में एक छात्र की मौत के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था। सैटेलाइट से आई नई तस्वीरों से पता चलता है कि मध्य सीरिया में एक सैनिक अड्डे पर हमले में 4 रूसी हेलीकॉप्टर और 20 लॉरियां जलकर खाक हो गई हैं। अमरीकी कंपनी स्ट्रैटफोर ने तस्वीरें जारी कर कहा है कि रूसी हेलीकॉप्टर और लॉरियां पिछले हफ्ते चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के हमले में जल गए हो सकते हैं। आईएस ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा है कि हमले के बाद आग लगने से गाड़ियों की तेल टंकियों में धमाका हुआ होगा। रूस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत आज एक ऐसी चीज से जुड़ी खबर से कर रहे हैं जो कि महानगरों ही नहीं बल्कि छोटे शहरों में भी नाश्ते की प्लेट का हिस्सा बनती है। यह है ब्रेड यानी डबल रोटी, पाव रोटी कहें या कहें कि बेकरी में बनी चीजें। कल पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने अपने एक शोध का हवाला देते हुए कहा था कि बाजार में बिकने वाली ब्रेड यानी कि बेकरी उत्पादों में कम से कम 84% में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट रसायन मिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। संस्था का कहना है कि इससे कैंसर तक हो सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि कई देशों में इन रसायनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा हुआ है लेकिन भारत में ये प्रतिबंधित नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद अब भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि एफ एआई ने इशारा किया है कि बाजार में बिकने वाली ब्रेड और बेकरी उत्पादों में कथित तौर से शामिल दो हानिकारक रसायनों में से एक पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, नितिन श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
आप में से बहुतों ने कभी न कभी ब्रेड के साथ चाय या दूध की चुस्की ली होगी, या फिर एक बड़े से बन को बीच से चीर कर उसमें मक्खन की एक टिकिया लगाकर इस बेहतरीन नमकीन नाश्ते का मजा लिया होगा। मैं भी बेहिचक लेता था ऐसे मजे, लेकिन जब से सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की ये रिपोर्ट आई कि बाजार में पैक होकर बिकने वाली इन ब्रेड या बन में से कुछ में ऐसे रसायन होते हैं जिनसे कैंसर तक हो सकता है, तो मन में शक बैठ गया है। पहले सुनिए CSE के चंद्रभूषण से इस शोध के बारे में।
ये दोनों केमिकल पोटेशियम आयोडेट, जो आयोडीन का केमिकल है, अगर आप अधिक पोटेशियम आयोडेट का सेवन करेंगे तो उससे आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, कम करेंगे आयोडीन का तो गोइटर का प्रॉब्लम है, इसी कारण हमारे देश में जो नमक है उसमें आयोडीन डाला जाता है, और इसी अगर अधिक सेवन करेंगे तो आपको अलग अलग तरह के थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा जो केमिकल है पोटेशियम ब्रोमेट, वो क्लास 2B कार्सिनोजन है। इसका मतलब ये है कि ये केमिकल पॉसिबल कैंसर कॉजिंग एजेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए।
जब से ये रिपोर्ट आई है जैसे हाहाकार समझ गया है। सवाल इस पर भी उठे कि आखिर किन पश्चिमी देशों में पोटेशियम ब्रोमेट और पोटेशियम आयोडेट जैसे रसायनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है और भारत में क्यों नहीं है। बाद घंटों में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा तक पहुंची और उन्होंने कहा तुरंत घबराने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार इसको गंभीरता से लेगी और मामले की पूरी जांच होने के बाद ही एक रिपोर्ट आएगी। इससे पहले CSE ने कहा था कि बाजार में आम तौर पर मिलने वाले 38 ब्रांड के ब्रेड, पाव, बर्गर वगैरह या दिल्ली के लोकप्रिय फास्ट फूड आउटलेटों के रेडी टू ईट पिज्जा ब्रेड के नमूनों की जांच की गई, जिसके बाद ये परिणाम सामने आए। इन पदार्थों में बड़े बड़ी फास्ट फूड चेन भी हैं, जैसे पिज्जा हट, डोमिनोज, सबवे, KFC, मैकडॉनल्ड वगैरह। बहरहाल डोमिनोज के अलावा तकरीबन सभी ने इन रसायनों के प्रयोग से इनकार किया है और कहा है कि उन्होंने हमेशा से भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों का पालन किया है। इस बीच मंगलवार को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने एक समाचार चैनल CNBC से बात करते हुए कहा कि उनका विभाग पहले से ही पोटेशियम ब्रोमेट को बैन करने का फैसला ले चुका था, लेकिन इस पर अभी सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी है। सुनिए पवन अग्रवाल को।
After careful consideration, it was decided that it should be removed from the list of permissible additives, and that was done a couple of months ago.
जाहिर है सरकार इस रिपोर्ट के आने के बाद थोड़ी ज्यादा मुस्तैद दिख रही है और ये पहले भी हो सकता था। बहरहाल आम लोगों को इससे ज्यादा परवाह अपने अपने स्वास्थ्य की है। नितिन श्रीवास्तव, BBC दिल्ली।
नितिन श्रीवास्तव, आम लोगों की बात कर रहे हैं तो कितने लोग सुबह नाश्ते में या फिर कभी भी भूख लगने पर ब्रेड खा लेते हैं, यही जानने के लिए हमारे सहयोगी अंजुम शर्मा पहुंचे लोगों के बीच।
अमनशील कौर,
आप ब्रेड खाती हैं?
हाँ जी खाते हैं।
कितना ब्रेड खाती हैं आप?
कभी कभी हफ्ते में एक बार ब्राउन ब्रेड खाते हैं, दूसरी नहीं।
तो आपको पता है CSE ने कल रिपोर्ट जारी की है कि ब्रेड में कैंसर हो सकता है ब्रेड खाने से?
आज ही पता लगे हमें तो।
अभी रिपोर्ट आने के बाद आप ब्रेड खाएंगे या नहीं खाएंगे?
खाएंगे, आप क्यों खाएंगे? जो पोटेशियम ब्राउनेट डाला इन्होंने कम करे या बिल्कुल खत्म ही कर दे उसमें से, जो ब्राउन ब्रेड बनाने के लिए ऐसे केमिकल डालते क्यों जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचे?
बिल्कुल पता चला और समझ नहीं आ रही कि ऐसा इतने सालों के बाद आज ये पता चल रहा, और आज तक क्या हुआ था? आज तक सोए हुए थे सब, आज तक मालूम नहीं था, आई एकदम बात ये चीज उठ गई।
खाएंगे या बच्चों को बोलेंगे?
डेफिनेट रोकेंगे हम कि भाई अभी तक ना खाएं, जब तक ना खाएं जब तक ये चीज़ जो क्लियर ना हो जाए कि हाँ भी उसमें से जो केमिकल्स पड़ता है वो अगर नहीं पड़े तो खाएंगे, इसमें क्या है, ये तो ऐसी रोजमर्रा की चीज़ है।
आप ब्रेड खाती हैं?
हाँ जी, सुबह ब्रेकफास्ट में।
बच्चे भी खाते हैं?
बच्चे भी खाते हैं।
अब ब्रेकफास्ट में आप क्या करेंगी?
हमें ब्रेड नहीं खानी चाहिए और हमें बाकी चीज़ों पर शिफ्ट होना चाहिए, प्रॉब्ली ओट्स या परांठी, बिकॉज कभी कभी मेरा बच्चा भी लेके जाता है स्कूल में ब्रेड, एंड पता चलने के बाद कि इसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स हैं, सो आई वुड नॉट प्रेफर टू गिव हिम। गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए, बिकॉज अगर हर चीज़ में इतना ही एडल्ट्रेशन होगी और प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो फिर वाई आर वी हियर।
मेरे को तो ये न्यूज़ कब आया पता नहीं, लेकिन मैं खुद ही अंदाज लगाती हूँ कि ब्रेड खाना हमेशा ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार थी मध्य प्रदेश जबलपुर में, रोटी जो खाते नहीं है लोग फेंक देते उसी से ब्रेड बनने का मैंने सुनी थी और मैंने अपनी आंखों से भी देखी थी वो ब्रेड फैक्ट्री जाके।
ये देखिए आज का न्यूज़ पेपर है, इसमें लिखा है CSE फाइंड डिजीज कॉजिंग केमिकल इन ब्रांडेड ब्रेड्स। तो ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जो यहाँ यूज़ होते हैं और बाहर यूज़ नहीं होते हैं।
हाँ, मेरी एक लड़की अमेरिका में है, लॉस एंजल्स में। मैं कल ही वहीं से वापस आई हूँ, उसके पास मैं गई थी। लेकिन मैं जो सोचती हूँ, अमेरिका में जो ब्रेड खाते, दैट इज़ बेटर क्वालिटी दैन द इंडियन ब्रेड।
ये देखिए अखबार में लिखा है, अब ब्रेड हुई खतरनाक, मिले कैंसर वाले रसायन।
रोज़ तो का एवरी डे हम तो मल्टीग्रेन ब्रेड ही खाते हैं। ये पढ़ने के बाद तो डर तो लगेगा किसी भी इंसान को भी, जो भी हो।
आगे तो हम खाएंगे नहीं, अगर हमारे यार दोस्त सामने मिल जाए तो उसे रोक लेंगे, बाकी हम क्या कर सकते हैं।
अब ब्रेड खाते हैं?
बहुत ज़्यादा खाते हैं घर में सभी लोग, डेली खाते हैं। अंडा और ब्रेड तीन पीस तो हर कोई खाता, तो अब देखते हैं। लेकिन है तो ये खतरा ही, जिंदगी अब तो खत्म होने वाली है, तो फिर इसमें क्या कर सकते हैं। मतलब अब तो नहीं खाएंगे, किसी को खाने भी नहीं देंगे।
आम जनता की आवाज। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जब मैगी का मामला सामने आया था और उसमें भी एक प्रतिबंधित रसायन लेड की बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में तमाम प्रयोगशालाओं में परीक्षण के बाद उसे क्लीन चिट मिली। इस दौरान मैगी को बाजार से हटा लिया गया, महीनों बाद मैगी की वापसी हुई। अब बारी ब्रेड उत्पादों की है। सवाल यह कि जो रसायन विदेशों में बैन है वो यहां कैसे चल जाते हैं। हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने बात की पर्यावरणविद वंदना शिवा से।
जब तक कोई स्टडी ना आए, जब तक कोई रिपोर्ट ना आए, क्या उस पर जागने में देरी क्यों होती है?
पहली बात तो ब्रेड में केमिकल्स होने ही नहीं चाहिए। अगर आपकी बेकरी लोकल बेकरी है, सुबह जाओ ब्रेड लाओ, शाम तक खत्म, कभी सड़ती नहीं है, ताज़ा ब्रेड खाओ, तो केमिकल की जरूरत नहीं है। अगर महीनों रखोगे और हजारों मील दूर उसे सप्लाई करोगे, तब केमिकल्स की जरूरत होती है। ये जो आप मानक की बात कह रहे हो, जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी बनी है, ये बनी है जब से WTO और ग्लोबलाइजेशन आया है। ये मानक इंडिया के लिए तीन वजह से बहुत गलत बने हैं। पहला, हमारे फूड सिस्टम और फूड कल्चर के खिलाफ है। मैं बढ़िया से बढ़िया ब्रेड बनाऊं लोकल बेकरी में, पर मेरी बेकरी छोटी है और मेरे पास लैब नहीं है, ये मेरी आके बेकरी बंद करवा देंगे। गांधी जी की घानी तक इस एक्सक्यूज पे, नए FSSAI स्टैंडर्ड्स पे बंद करवाई कि यहाँ पे लैब नहीं है। जब तक WTO नहीं आया, तब तक फूड प्रोसेसिंग वाज रिजर्व्ड इन द स्मॉल स्केल सेक्टर। इसका मतलब लोकल कम्युनिटी और सोशल रेगुलेशन था, और प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट से सरकार भी अडल्टरेशन को रोक सकती थी। अब इन्हें अडल्टरेशन को नॉर्म बना दिया है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग ऑफ फूड इज अडल्टरेटिंग फूड विद केमिकल्स, और उसको इनने खुला दे दिया है।
कमी कहां पर है? कभी मैगी मिसाल के तौर पर, अब सवाल ब्रेड पर उठ रहा है, तो आखिर चूक कहां पर हो रही है?
दो चीजें हैं हमको, एक तो डाइवर्सिटी ऑफ रेगुलेशन की बहुत जरूरत है। कुछ चीजें जो लोकल लेवल पे सेफ हैं, हेल्दी हैं, उसको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को रेगुलेट करना गलत है। अभी मैं इंदौर में थी, हर इंदौरी को पता है कि कौन सा दही भल्ला बढ़िया है। ये सरकारी और गवर्नमेंट रेगुलेशन लाके एक लाइसेंस राज, जो करप्शन की जड़ है, उसे वापस ला रहे हैं। कुछ चीजें हम जानते हैं दुनिया भर में स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। भारत एक प्राचीन सभ्यता है कि आज पश्चिम के जहर को लाके उसको फिर रेगुलेट करने की कोशिश करें, जरूरत नहीं है। समथिंग शुड जस्ट बी बैंड, दे हैव नो प्लेस इन द फूड वी ईट।
लेकिन वंदना जी, वेस्टर्न कंट्रीज में जो ये खास तौर से ब्रेड पर लौटे हैं, अगर तो पोटेशियम ब्रोमेट की जो बात है, जो जिसको बताया जा रहा है रसायन है जिससे ये खतरा हो सकता है, वो तो पहले से बैंड है। भारत में क्या वजह रही है कि
जैसे ही आप पश्चिम के फार्मास्यूटिकल्स को लाओगे, वो वहाँ के जो बैंड और हजारस ड्रग्स हैं उनको यहाँ डंप करेंगे। जब आप पेस्टिसाइड्स की बात लोगे और खोल दोगे पेस्टिसाइड्स के लिए, तो गंदे से गंदे पेस्टिसाइड जो और जगह अलाउड नहीं है वो डंप होंगे। इसी तरह खाने में जो केमिकल्स बाहर खत्म हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, वो यहाँ लाए जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक भारतवर्ष में इतनी सारी लैब्स बनेंगी, जब तक इतने सारा टेस्टिंग होगा, तब तक तो हम अपना बिलियंस कमा के भाग जाएंगे। इसीलिए हम कहते हैं खाने में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कोई रोल नहीं है। दूसरा है प्रोसेसिंग में, हमें इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की कहीं जरूरत नहीं है।
पर्यावरणविद वंदना शिवा अपनी राय रख रही थी कि भारत में किस तरह खाद्य पदार्थों को बनाया जाना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर कहानी यह है कि भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने ब्रेड में मौजूद एक हानिकारक रसायन पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए हैं।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर। पूर्वोत्तर राज्य असम में विधानसभा आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाले सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में सभी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तो मौजूद थे ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ केंद्र सरकार के सभी बड़े कद्दावर मंत्री भी इस समारोह के गवाह बने। दिलीप शर्मा की रिपोर्ट सुनते हैं।
सर्वानंद सोनोवाल ने मंगलवार को असम के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले नेता हैं। गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित वेटनरी कॉलेज फील्ड में बुधवार को आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल पीबी आचार्य ने सोनोवाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। उनके साथ 10 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री बनने वालों में एजीपी के 2 और बीपीएफ के 2 विधायक शामिल है। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा,
আমি সকলে একাকার হই বৃহত্তর অসমীয়া জাতিক ভারতবর্ষ রূপত প্রতিষ্ঠা করিম আর সকলক অর্থনৈতিক ভাবে সবল।
हम सब एक साथ मिलकर बृहत्तर असमिया जाति को भारत में प्रतिष्ठित करेंगे। आप लोगों ने जो भरोसा जताया है, मैं आप सभी को विश्वास में रखकर उन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने की कोशिश करूंगा जो पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी है। मेरी सरकार का लक्ष्य सबको समान रूप से आर्थिक विकास करना रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठ भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। आर्थिक सबलता और सामाजिक सुरक्षा मेरी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत सभी केंद्रीय मंत्री और भाजपा एवं एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा,
श्रद्धार असमवासी राइज आपन लोग होकोल के एने एक ऐतिहासिक रायदान और बाबे মই নোট হিরে হেবা জনাইছো। মই সবসে পহলে আসাম বাসিওকো নমন করনা চাহতা হু কি জিনহনে বিকাশ কা সপনা দেখা।
সমারোহ মে শামিল হুয়ে পঞ্জাব কে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল নে আসাম কে লোগো কো বধাই দেতে হুয়ে কহা,
मैं पंजाब जो कि हिंदुस्तान की ग्रेनरी है और सोड आर्म है, पंजाबियों के तरफ से आपको मुबारकबाद देने के लिए आया। श्रोमणी अकाली दल जो मेरी पार्टी है वो सबसे पुरानी बीजेपी की साथी है। हमने हमेशा एक दूसरे का बहुत बड़ी तरीके से साथ दिया और एक दूसरे से बड़ा प्यार सत्कार किया। हमें इंतहाई खुशी है कि यहाँ बीजेपी की लीडरशिप में सरकार बनी है। मैं सरकार के मुख्यमंत्री साहब और मंत्री साहबान को और सारे असम के रहने वालों को मुबारकबाद देता हूँ।
मुख्यमंत्री बनने के बाद भले ही सोनोवाल ने कोई नई घोषणा नहीं की, लेकिन असम के लोगों को इस सरकार से काफी उम्मीदें हैं। गुवाहाटी में रिक्शा चलाने वाले मोहम्मद रफीकुल हक का कहना है,
नकदी है, बीजेपी सरकार आया लेकिन हम लोग का सुरक्षा सही है, सुरक्षा सही है, कोई तबलीग नहीं होना चाहिए। हम लोग का काम करने का आदमी है, हम लोग मजबूरी करके खड़ा है, रिक्शा 10 साल से चल रहा है।
आरएसएस समर्थक पत्रिका ऑर्गेनाइजर ने अपने एक संपादकीय शीर्षक में ये दावा किया है कि सर्वानंद सोनोवाल का नेतृत्व असम के लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है। दरअसल विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जिस कदर हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का फायदा भाजपा ने उठाया, अब पार्टी को इस समस्या से निपटना होगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा ताकि भारतीय मुसलमानों को इससे कोई तकलीफ न हो। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
पूर्वोत्तर राज्य असम में बीजेपी का परचम फहराने वाले सर्वानंद सोनोवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 2 साल पूरा होने को है। अगले कुछ दिनों तक हम नरेंद्र मोदी के 2 सालों के कामकाज का विश्लेषण करेंगे लेखा जोखा लेकर, यानी कि सरकार ने किन मोर्चों पर सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और कहां वो कामयाब नहीं रहे। 2 साल के इस अरसे में मुसलमानों के लिए उनके सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। हमारे सहयोगी जुबैर अहमद कुछ दिनों पहले दिल्ली के मुसलमानों के एक मोहल्ले में गए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं से इस बारे में उन्होंने उनकी राय जानने की कोशिश की। सुनते हैं उनकी ये बातचीत।
इस समय मैं दिल्ली की एक मस्जिद के निकट भारतीय जनता पार्टी के कुछ समर्थकों और कार्यकर्ताओं से रूबरू हूँ। दिलदार हुसैन बेग दिल्ली नगर निगम के कॉन्ट्रैक्टर हैं और पुरानी दिल्ली में काफ़ी असर रखते हैं। दिलदार जी, मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने पिछले 2 सालों में कोई ठोस कदम उठाए हैं?
बदलाव मेरी समझ में नहीं आया किस चीज़ का बदलाव कहते हैं। हम तो जहाँ पहले थे आज भी वहीं हैं, और हमारा मानना ये है कि मैं 25 साल से बीजेपी में काम कर रहा हूँ, हम लोगों को दोनों तरफ से मार पड़ती है, अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर भी और जो हमारे हिंदू भाई हैं जो इनके साथ हम काम करते हैं वहाँ भी। और हमने उनके लिए वो काम किए जो उनके अपने पर्सनल लोग नहीं कर सकते। मेरे पास आज की डेट में 1,09,000 जो है का रजिस्ट्रेशन है जो हॉकर्स का। मैंने 28,000 वोट लेके दिए इंडिपेंडेंट, लेकिन आज तक हमें कोई ये पूछने को तैयार नहीं है, भैया आपने हमारे लिए इतना किया था, आपको हम ये चीज़ दे रहे हैं।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट शबनम खान, मुझे ऐसा लगता है कि दिलदार जी से वो सहमत नज़र नहीं आ रही हैं।
इसमें जुबैर भाई मैं एक चीज़ कहूँगी, इसमें हम लोगों की खामी है। आप पर हम दूसरे पर ही सारी चीज़ लादना चाहते हैं। क्या आप पर हमने एकजुट होकर कभी ये आवाज़ उठाई? आपने अगर पार्टी को इतने
मैंने
साल
तो रिटर्न में अमित शाह जी को और राजनाथ सिंह जी को, सुषमा जी को, मेरे पास कम से कम 20 लेटर हैं। प्रधानमंत्री जी को मैंने लेटर लिख के दिया, मैंने कहा सर आप जो है परिवार के मुखिया हैं अमित शाह जी को, कि आप कम से कम पार्टी के कार्यकर्ता के कम से कम दुख दर्द के लिए एक मीटिंग तो
आपकी मांग क्या थी? मतलब आपने हमारी मदद की 25 साल से।
मांग ये थी कि हम कम से कम जो है अपनी कम्युनिटी के अंदर भी शक की निगाह से देखे जाते हैं, आप हमें कहीं भी वो आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करते, तो हमें कम से कम एक सम्मानित तौर पे आप हमें बुला करके हमसे बात तो करें, हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं,
बैठने को भी तैयार नहीं है।
मुझे लगता है जुबैर भाई
आप चाहते हैं कि कम से कम पार्टी में आगे बढ़े।
देखिए ऐसा है, मैं अगर खाली इतनी ही बात कहनी हो कि मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी वो कर रहे हैं, तो भाई इसके लिए तो मैं तैयार नहीं, मैं तो सच्ची बात कहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये है कि कम से कम पार्टी की बात तो सुन।
हमारा उद्देश्य, बीइंग ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आपसे बोल रही हूँ, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरे लिए क्या किया जाए, हमारा उद्देश्य है कि मुस्लिम पढ़ेगा कैसे, मुस्लिम आगे बढ़ेगा कैसे, मुस्लिम समाज में आगे कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। हमारी मोदी जी से बस इतनी मांग है, मुस्लिम समुदाय को आप क्या देंगे।
अब चर्चा में मोहम्मद बिलाल को शामिल करते हैं जो RSS के मुस्लिम मोर्चे से जुड़े हैं। मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत है?
बात आरक्षण की क्यों की जाए, बात की जाए बराबरी की। नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद जब वो आए, वो संशय, वो भय, वो वातावरण जो बनाया था उन लोगों ने जिन्होंने लंबे समय तक शासन किया है, उसका कारण कौन है? तो कारण दोहरे हुकूमत वो रही जो अब तक इनकी नहीं रही जो 2 साल से हैं। नई रोशनी आई के नाम से जो है योजना शुरू हुई है, लड़के को पढ़ाया तो खालिस एक इंसान को पढ़ाया, और लड़की को पढ़ाया तो पूरे ख़ानदान को पढ़ाया, सबका साथ सबका विकास लेके भावनाओं की बात हुई है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुस्बत सोच के साथ आज वाले माहौल में बदलाव आया है, और मैं बताना चाहता हूँ कि दंगे हुए हैं, लेकिन दंगे उनके भी राज में हुए हैं जो मुसलमानों के सबसे दुलारे बनते हैं, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए।
दंगे अधिक ना हुए हों लेकिन मुसलमानों में भय जरूर है, घर वापसी का नारा हो या गाय को लेकर हिंसा, डर तो समुदाय में है। तो डॉक्टर इकबाल भी मुस्लिम मोर्चे से जुड़े हैं, डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे?
पिछले 60-65 सालों में जो हुकूमत रही ज़्यादातर कांग्रेस की रही, मुसलमान के अंदर कुछ डर था, ये कुछ दूसरी पार्टियों ने, समाजवादी पार्टियों, कांग्रेस पार्टियों, इन्होंने हुआ बनाया हुआ था। लेकिन जब मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने पब्लिक से जुड़ी हुई अपनी जो है योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने लगी वो, तो मुसलमानों का भरोसा धीरे धीरे बढ़ने लगा।
जो आप जब जाती हैं मुस्लिम समुदाय में इस तरह की बातें करती हैं तो आपको मुजाहमत होती है?
नहीं, वो पहले का समय था जब कांग्रेस ने भ्रमित कर रखा था, जब कांग्रेस ने एक छत राज मुसलमानों पे अपना जमा रखा था कि दूसरी पार्टीज तो आपको खा जाएंगी, और मोदी जी तो भाई देखिए वो तो बड़े कोई ख़तरनाक इंसान हैं, इस तरीके का भ्रम जाल फैलाया हुआ था।
पहले जो इन्होंने बात बोली थी कितनी अच्छी, पिछले 15-20 साल से आप लगातार बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे एरिया में रह के काम कर रहे हैं कि जहाँ बीजेपी का नामो निशान नहीं होता था, और आज अगर इन्होंने इंडिपेंडेंट 28,000 वोट लिए हैं तो इनका कहने का मतलब ये था, इनका दर्द ये था कि पार्टी इनको बुलाती, कहीं अच्छा ओहदा देती, पब्लिक का काम करने के लिए इनको कम से कम जिम्मेदारी देती।
चापलूसी ज़्यादा है, जो जितनी ज़्यादा
चापलूसी तो हर पार्टी में है।
नहीं नहीं, पार्टी हमारी पार्टी में वो चीज़ आ गई जो चीज़ दूसरी पार्टियों में थी, हमारी पार्टी का ग्राफ इसीलिए डाउन हो रहा है।
शबनम जी, प्रधानमंत्री तो इन मुद्दों पर कुछ बोलते ही नहीं, तो पहले आप अपनी राय दीजिए, उसके बाद डॉक्टर इकबाल आप कुछ कहें इसके बारे में, और आखिर में आप मोहम्मद बिलाल।
मुझे लगता है कि मोदी जी को इस पर कड़े एक्शन लेने चाहिए, हालांकि वो समय
तो बोलते ही नहीं
है। नहीं नहीं नहीं, समय
ऐसे
नहीं नहीं, ये आपको जुबैर भाई गलत फहमी है। मोदी जी
सारी दुनिया कह रही
है। नहीं नहीं, मोदी जी ने समय समय पर बुलाकर इन लोगों की क्लास लगाई है और अपने MPs को खासकर कहा है जो इस तरीके की भाषा
पब्लिकली उन्होंने कंडेम नहीं किया,
ये पब्लिकली ही है। जब आपने उनको मीटिंग बुलाकर सामने डांट लगाई, ये पब्लिकली ही हो जाता है। जहां आपने देखा होगा अब ऐसे लोगों की जबान पर लगाम लगती नजर आ रही है।
मैं कहना चाहता हूँ, जिन मुसलमानों को डर लग रहा है उन मुसलमानों को एक महीने के लिए आप पाकिस्तान भेज दो, और एक महीने बाद जब आप उनको बुलाओगे तो इंशाअल्लाह वो हिंदुस्तान की धरती चूमते हुए नजर आएंगे।
और मैं अदब के साथ कहूँ कि ये जो मुल्क है ये इकट्ठा साझी संस्कृति का मुल्क है, तो यहाँ पर ओवैसी साहब का सिर्फ एक वर्ग के लिए बोलना और साध्वी प्रज्ञा का कड़वा बोलना दोनों ही गलत है, क्योंकि वंदे मातरम की लाइनें भी हैं कि सुमधुर भाषिनी और सुभाषिनी। ज़रूरत सिर्फ तालीम की है, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने भी इरशाद फरमाया कि तालीम के लिए चीन जाना पड़ो तो वहाँ जाइए, क्योंकि तालीम के आधार पर सबूत है हमारे पास कि मछुआरे का बेटा मिसाइल मैन भारत रत्न APJ कलाम अगर बन जाते हैं तो तालीम की बुनियाद पर बन जाते हैं।
भारतीय जनता पार्टी समर्थक मुसलमानों से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी जुबैर अहमद। इस बातचीत को अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो इसे हम सुबह के कार्यक्रम में प्रसारित करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट के दायरे से राज्य बोर्डों को एक साल के लिए बाहर रखने संबंधी अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस साल राज्य सरकारों को नीट से बाहर रखा गया है, लेकिन निजी कॉलेज की सीटें नीट के जरिए ही भरी जाएंगी। नीट परीक्षा का पहला दौर 1 मई को हो चुका है, जिसमें लगभग 6.5 लाख छात्र बैठे थे, और इस परीक्षा की अगली तारीख 24 जुलाई को है। लेकिन इस अध्यादेश के जारी होने के बाद राज्य बोर्डों के छात्रों को 24 जुलाई को होने वाली परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं होगी। और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल की खबरों की। आदेश कुमार गुप्त जी मौजूद हैं। आदेश जी, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप
जी। देखिए, बात यह है मुस्कुराने की कि आखिरकार 2 महीने से चला रहा IPL अब धीरे धीरे अपने अंतिम मुकाम की तरफ बढ़ रहा है, और आज इसी कड़ी में थोड़ी ही देर बाद फाइनल की जद्दोजहद शुरू होगी, जहां बेंगलोर में पहला क्वालिफायर मुकाबला जिसमें गुजरात लायंस का सामना मेज़बान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। ताज़ा समाचार ये है कि बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। इससे पहले कि इस पर अधिक चर्चा करें, कुछ दूसरे समाचारों की बात की जाए तो कजाकिस्तान के अस्ताना शहर में जारी विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 57 किलो भार वर्ग में भारत की सोनिया लाथेर सेमीफाइनल में पहुंच गई है, जहां उनका सामना कजाकिस्तान की अइज़ाहान खोजाबकोवा से होगा। सोनिया ने क्वार्टर फाइनल में पोलैंड की अनेवा रिजलिस्का को 3-0 से मात दी, लेकिन 48 किलो भार वर्ग में भारत की सरजू बाला क्वार्टर फाइनल में हारकर बाहर हो गई। वहीं साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन में महिला एकल वर्ग में तब बड़ा उलटफेर हुआ जब तीसरी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गई। उन्हें गैर वरीयता हासिल नीदरलैंड्स की किकी बर्नेस्ट ने 6-2 3-6 6-3 से मात दी। अब अगर IPL में होने वाले पहले क्वालिफायर मुकाबले की बात की जाए तो विराट कोहली अभी तक 4 शतक और 6 अर्धशतक की मदद से 919 रन बना चुके हैं। सबकी नज़रें होंगी कि क्या वो चमत्कारिक 1000 रन तक पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि पर्पल कैप पर तो उनका जो है वो ऑरेंज कैप जो है उस पर तो उनका हक है ही। AB डिविलियर्स भी उनके बहुत ही दमदार बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 1 शतक और 5 अर्धशतक की मदद से इस IPL में 603 रन बनाए हैं। और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो अब उनकी नज़रें रहेंगी यजुवेंद्र चहल पर, जिन्होंने अभी तक इस IPL में 19 विकेट झटके हैं। तो अब देखना है कि सुरेश रैना, आरोन फुरंज, ब्रैंडन मैकुलम, दिनेश कार्तिक और ड्वेन स्मिथ कितना बड़ा योगदान अपनी टीम को देते हैं और क्या लक्ष्य रखते हैं बेंगलोर के सामने।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में ब्रेड और बेकरी उत्पादों में कैंसर पैदा करने वाले रसायनों के इस्तेमाल की जांच के आदेश दिए हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के एक अध्ययन में दिल्ली में ब्रेड और बेकरी उत्पादों के 84% नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले 2 रसायनों के अंश मिलने का दावा किया गया था। सर्बानंद सोनोवाल ने असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मौजूद रहे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इंटरनेट कंपनी गूगल के मुख्यालय पर आयकर के मामले में छापे मारे गए हैं। फ्रांस के वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि गूगल पर फ्रांस की सरकार का 1.6 अरब पाउंड बकाया है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 13 साल पुराने फैसले को सही ठहराया, जिसमें अदालत ने पुलिस को अनियंत्रित गिरफ्तारियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। अगला कार्यक्रम यानी कि घटना चक्र लेकर हम फिर से उपस्थित होने वाले हैं। मोहनलाल शर्मा को हेमंत कुशवाहा के साथ विदा दें। नमस्कार।